शांति। और अभी हम जिनको लाए हैं वो इस रूहानी दुनिया के रहनुमा हैं। आपने देखा गणित का कमाल उन्होंने दिखाया अभी हमको। लोग हिंदी के विद्वान हैं, अंग्रेजी के विद्वान हैं, उर्दू के विद्वान होंगे, अनेक भाषाओं के विद्वान होंगे, लेकिन जहां सारी भाषाएं मौन हो जाती हैं वहां भी कोई भाषा काम करती है, और वो होती है हृदय की भाषा, मौन की भाषा, स्पंदन की भाषा, जो हृदय ही सुनता है। और हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्वैर जी हृदय की भाषा में बोलते हैं, जिसे हृदय का स्पंदन सुना करता है। आप पंजाब की धरनी, मैं ये कहूँ कि बिलोंग करते हैं तो अच्छा नहीं लगता अगर ये कहूँ कि शेर पंजाब हैं, एक बार तालियां हो जाएं। उस धरनी में जन्म लेकर और उसके साथ साथ आप सागर की गहराइयों को नापने उतर गए थे, लेकिन परमात्मा सागर उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, स्वयं साकार बाबा ने उनको पालना दी, और बहुत ही शीघ्र उन्होंने उस कार्यक्रम से विदा लेकर के माउंट आबू में आकर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। बॉम्बे में जब नेवी में थे तो वहां से ये पढ़ाई शुरू की थी। आपको आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी का भरपूर सानिध्य और शिक्षा मिली, बाबा का निर्देशन मिला, और यज्ञ में जिस दिन से कदम रखे एक जिम्मेवार रतन की तरह आपने यज्ञ को पल पल संवारा है, पल पल सजाया है। और जो पंजाब की धरनी की विशेषता होती है, जो ठान लिया है हमने, वो पूरा कर दिखलाएंगे। आपने जब जब दादी जी ने संकल्प किया वो पूरे किए। आज जो हम देखते हैं आश्रम की गरिमा, आपके संचालन, आपके नेतृत्व में ज्ञान सरोवर ने आकार लिया, आपके नेतृत्व में ग्लोबल हॉस्पिटल ने आकार लिया, और आपके नेतृत्व में आज जहां बैठे हैं इस सभागार ने भी आकार लिया है। तो आपने न केवल लोगों के दिलो दिमाग को ऊंचाइयां दी हैं, राजयोग की ऊंचाइयां दी हैं स्पंदन की भाषा में, वरन साथ साथ आपने साकार में भी तमाम भवनों का निर्माण निर्देशन किया। आप कलम के भी उतने ही धनी हैं, आपने आध्यात्मिक पुस्तकों को लिखा, और साथ साथ जो वर्ड रिन्यूअल आपके हाथों में आती है आप उसका भी नेतृत्व और संपादन दोनों देखते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि आप सेक्रेटरी जनरल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के, और वाइस प्रेसिडेंट हैं जानकी फाउंडेशन ग्लोबल हेल्थ केयर लंदन से, आप चेयरपर्सन हैं एजुकेशन विंग के। बच्चों के प्रति जो अगाध वात्सल्य आपके हृदय में था, मैंने देखा है जब यहाँ पहला बाल शिविर लगा था, वो जो बच्चे पार्टियों में आया करते थे अंकल जी कहकर घेरे रहते थे, और तब आपके मन में ये भाव आया कि इन बच्चों के बचपन को दिशा मिलनी चाहिए। आज जो यहाँ बाल व्यक्तित्व विकास शिविर लगाए जाते हैं उसकी रचना भी आपके ही हृदय में जन्म ली। लोगों को कराहते और दुखी बीमार देखते हुए आपको बहुत रहम आता था। अगर कहूँ कि वो रहम का सागर है तो वो रहम का दरिया है, और उन्होंने यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल का निर्माण, ट्रामा का निर्माण कराया। तो आदरणीय भ्राता निर्वैर जी जितना अध्यात्म की ऊंचाइयों को पहुँचे उतना मानवता के हृदय को भी पहुँचे। आज का विषय है स्वस्थिति से कैसे परिस्थितियों पर विजय पाई जाए, उनसे अच्छा और कोई नहीं जानता। आदरणीय भ्राता जी आज इस पर बताएंगे।
ओम शांति। मैं सोच रहा था कि हम कितने सब सौभाग्यशाली हैं, मनोरमा बहन से पहले मृत्युंजय भाई को आपने सुना, भ्राता महेंद्र सिंह जी को सुना, और इतनी ऊंचाइयों में सबको ले गए, कितनी खुशी की बात है। यह मैं जानता हूं कि सबके दिल में आज के दिन के लिए विशेष एक ही बात है, बाबा से मिलना है, बाबा मिलन मनाना है, बाबा मिलन का अनुभव करना है। उसकी बात अभी हर एक के दिल में है, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी क्या कहते हैं, जब आप सब्जी खरीदते थे पहले तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी दे देते थे बेचने वाले, हाँ ऐसे है। तो आज आपको बाबा ने कई कुछ एक्स्ट्रा दे दिया और उसमें मेरी भी क्लास एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। मनोरमा बहन की विशेषता तो आप सबने देखी, जो उनके दिल में दिमाग में जो बातें होती हैं उसको ऐसी भाषा वो यूज करते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उनके सामने मेरे ख्याल में नतमस्तक होते हैं। अब हम ऐसी दुनिया में फिर चलते हैं जहां भाषा की इतनी बातों से भी परे जाना पड़ता है। साकार बाबा और अव्यक्त बाप दादा दोनों के समय की बातें, और उसमें भी आज का जो विषय दिया गया है उसको सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सब बहनों को भाइयों को इस बात की बधाई दूं कि आपको अपने अलौकिक जीवन का कितना गौरव होना चाहिए। संसार के अंदर 730 करोड़ भाई बहने हैं, मैं भाई बहने ही कहूंगा क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं। आबादी इस संसार की इस समय 730 करोड़ है, और उसमें से भारत की आबादी 125 करोड़ है। 125 करोड़ में से आज की सभा में कितने उपस्थित हैं, 15-16 हजार बैठे हैं। क्या परसेंटेज रही, 15-16 हजार भाई बहने सारे भारत से चुने हुए, आज विशेष ईश्वरीय मिलन के लिए यहां पधारे हैं। कोई छठ मना रहे हैं, कोई और कई रस्मों रिवाज की बातें करते हैं, तो भक्ति मार्ग की तो अनेक बातें हैं, लेकिन उसकी भेंट में आप भाई बहनों से पूछ रहा हूं, जब से आप शांतिवन में आए हैं कोई ऐसा बीच में लम्हे या ऐसे सेकंड या ऐसे मिनट आपके सामने आए हैं जब आपको शांति का अनुभव ना हो, आपको ईश्वरी प्रेम का अनुभव ना हो, आपको दैवी परिवार के सदस्यों के प्यार का अनुभव ना हो, आपको हर चीज बिना मांगे सब मिल रही है, जो देवताओं के लिए मशहूर है कि देवताओं को बिन मांगे सब कुछ मिलता है, तो आप भी देव समान बन गए। तो अपने स्वमान में आ जाएं थोड़ा आप, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को कौन सा टाइटल दिया हुआ है? टाइटल बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं बाबा ने, अपनी समीपता के टाइटल दिए हुए हैं कि बाबा के आप नैनों के नूरे रतन हो, बाबा के दिल तख्त नशीन हो, बाबा के मस्तक की मणि हो। अब आप सोचिए थोड़ा, और सोच करके आप अपने हृदय में थोड़ा गदगद हो करके महसूस करें कि अति इंद्रिय सुख क्या होता है। और फिर इसके साथ में ऐसा बेहद का परिवार, दुनिया के अंदर तो मशहूर करते रहे, खासकर भारत में कुछ समय पहले बड़े परिवार से पहले बड़ा सुख मिलता था जॉइंट फैमिलीज में। धीरे 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 किस बात पे पहुंच गए? हम दो हमारे दो, बस। बच्चों को भी बुजुर्गों का प्यार ना मिले और बुजुर्गों को भी ध्यान देने वाला कोई ना सामने मिले, ऐसी स्टेज आ गई। लेकिन बाबा का परिवार हर दिन थोड़े थोड़े बाबा के बच्चे इस परिवार में ऐड होते हैं, बढ़ते हैं। और जितने बाबा के बच्चे बढ़ते हैं उतना हम सब का खुशी का पारा और ऊपर जाता है। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इतने भाई बहनों के बीच में कैसे बैठेंगे हम, कैसे भोजन करेंगे, कैसे चाय मिलेगी, कैसे आराम करेंगे? सभी आराम से रहे हुए हैं, हाथ खड़ा करो जरा। वाह, सभी के हाथ ऊपर हैं, मुबारक हो आपको। तो आज का दिन ये बहुत ही अच्छा दिन है। सबसे पहली बात तो यही है कि आज के दिन हमारी प्यारी जानकी दादी जी यहीं पर हैं, रतन मुनि दादी जी यहीं पर हैं। कल मैं सुन रहा था कि बहुत जल्दी गुलजार दादी जी भी मधुबन आने वाले हैं। ऐसा समाचार मिला है, लेकिन आपके होते आएंगी या आपके बाद आएंगी वो मैं कह नहीं सकता। तो दादियां भी यहां हैं, ब्रिजमोहन भाई जी भी यहां हैं, अव्यक्त रूप से आप जिसको याद करेंगे वो यही है। चाहे दादी जी को याद करें प्रकाशमणि को, चाहे दीदी को याद करें मनमोहिनी को, चाहे मातेश्वरी सरस्वती को, अव्यक्त बाप दादा को, जिसको भी करेंगे आपको उनकी प्रेजेंस महसूस होगी, अवश्य होगी। लेकिन बाबा ने एक बात कही, बहुत समय पहले की बात है, बहुत अच्छे अच्छे समाचार बाबा के पास आते थे, खुशी होती थी हमें भी सुनकर के भी। पर बाबा ने एक बात कही है, बड़े सोचने की बात है। बाबा ने कहा, बच्चे हर एक अपना पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक आगे बढ़ने के लिए कोई दौड़ रहा है, कोई तेज चल रहा है और कोई धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उनको ना देखो, अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान दो। आपकी जो मंजिल है वो आपके मन के नेत्र के सामने सदा रहनी चाहिए। हम सब की मंजिल कौन सी है? सभी को याद है, कहने में तो आता है हम मनुष्य से क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। उससे पहले फरिश्ता बनेंगे। तो आज अपने आप से पूछें, कि हम इस लक्ष्य को कितने परसेंट हमने प्राप्त किया, कहां तक पहुंचे। देवताओं के लिए उनकी महिमा अलग है, फरिश्तों के लिए उनकी महिमा अलग है, और फिर बाबा ने ब्राह्मण परिवार की महिमा जो की है उनसे भी ऊंची बताई है। और उसमें विशेष कौन सी बात है, जब देवता रूप में है तो शिव बाबा उस समय हमारे साथ नहीं होगा। सुना है ये? एक बार एक बहन ने बाबा को पत्र लिखा तो अव्यक्त बाप दादा के द्वारा, कि बाबा जब मैं सतयुग में राज गद्दी पर बैठूं तो आप मेरे बाजू में आकर के जरूर बैठना। बड़े प्यार से लिखा, बाबा को सुनाया कि बाबा ऐसा पत्र आपके लिए लिखा है। बाबा ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बच्ची को लिखो कि तुम्हारा पत्र मिला। बाबा को सुनकर बहुत हर्ष हुआ और बाबा ने कहा उनको ये भी लिख दो कि जब सतयुग में तुम राज गद्दी पर बैठोगी उस समय बाबा को निमंत्रण भेजना, तो बाबा जरूर आ जाएंगे। सभी सोच रहे होंगे ना कि ये तो बात अच्छी है, हम जाकर के सतयुग में बाबा को पत्र लिखेंगे। पर बाबा जानता है कि ये मेरे बच्चे यहां से फरिश्ता बन के परमधाम में जाके और फिर जब देवता बन जाएंगे तो इनको सब भूल जाना है। तो ऐसी बातें कभी हमने पहले भक्ति में प्यार बहुत रखा भगवान से, श्री कृष्ण से भी बहुत प्यार रखा, इतना प्यार श्री लक्ष्मी नारायण से नहीं रखा जितना श्री कृष्ण और राधे से रखा। बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं सभी। और बाबा कहते थे स्वतो प्रधान है वो, भगवान से दूसरा नंबर है श्री कृष्ण, इसलिए उनसे ज्यादा प्यार है। लेकिन बना कैसे? आज की मुरली अच्छी ध्यान से सुनी होगी, बाबा ने कैसे ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव बाबा का, आपसी संबंधों का इतना प्यार से इतना स्पष्ट वर्णन किया, जो सुनते सुनते नए भाई बहने भी समझ जाएं कि शिव बाबा का पार्ट क्या है, ब्रह्मा बाबा का पार्ट क्या है, श्री कृष्ण का पार्ट क्या है। कैसे गीता ज्ञान दाता स्वयं शिव बाबा है, माध्यम उनका ब्रह्मा बाबा है, और उसके फल स्वरूप जो मनुष्य से देवता बनते हैं वो श्री कृष्ण स्वरूप है। प्रश्न उठता है जिसके लिए इतना मशहूर है कि गीता के ऊपर श्री कृष्ण का नाम रख दिया, क्या सचमुच श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान होगा? होगा क्यों? उस ज्ञान से तो वो बना, लेकिन पुनर्जन्म होने के कारण संगम युग की बातें सब यहीं रह जाती है। अगर उस सत्ययुग में जब श्री कृष्ण का जन्म होता उस समय अपने पिछले जन्म की बातें उनको याद आए, किन लोगों के साथ व्यवहार में आए, ऊंचाई निचाई कोई आई, तो सत्ययुग का आनंद रहेगा उनके पास? वो आनंद ही नहीं रहेगा। इसलिए ये ड्रामा इतना सुंदर बना हुआ है, इतना विचित्र भी है, इतना सुंदर भी है कि जब पुरुषार्थ करते हैं तो आपको सत्ययुग के आद से लेकर के कलयुग के अंत तक का पूरा ज्ञान आपको मिल जाता है, और इसके साथ साथ तीनों लोकों का ज्ञान मिल जाता है। लेकिन सारा पुरुषार्थ इस समय का जो चल रहा है, आप अपने दिल से थोड़ा पूछिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं? तो बाबा प्यार से कभी कभी साकार बाबा पूछ लेते थे, बच्चे सत्ययुग में तो 8 पीढ़ी चलेंगी, तो वहां तो श्री राम तो होगा नहीं, बाद में श्री राम का राज चलेगा, तो आप सत्ययुग की बादशाही नहीं ले सको तो क्या श्री राम बनना पसंद करोगे? इस सभा में बैठे हुए भाई बहने बताओ बनेंगे? कोई एक नहीं हाथ उठा रहा है। अरे राम इतना पूजनीय है, इतना माननीय है, इतनी उसकी महिमा है, रामायण सारी कितनी राम के कितने चरित्र दिखाते हैं, पर कोई भी बनने को तैयार नहीं है। अच्छा श्री नारायण जो बनेंगे जरा हाथ खड़ा करें, माताएं भी बनेंगी? अच्छा श्री लक्ष्मी जो बनना चाहेंगे, भाई कोई? थोड़े से भाई भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। कुछ भी बनो, कहने में एक ही बात आती है, मनुष्य से देवता। मनुष्य तो मनुष्य है, देवताएं भी मनुष्य हैं, फर्क क्या है? कुछ तो फर्क होगा ना? तो दोनों की महिमा में फर्क है, दोनों के स्वरूप कुछ उसमें भी फर्क हो सकता है, लेकिन मुख्य बात है कि वर्तमान समय पुरुषार्थी जीवन है, ईश्वरी जीवन है सबसे ऊंच। जिन बच्चों को बाबा ने ज्ञान दिया है, आप समान बना दिया है, दुनिया के अंदर ईश्वरी ज्ञान नहीं है, बहुत क्लियरली बाबा ने बता दिया। भक्ति का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान सुनाते हैं, भक्ति भाव से बहुत प्यार से सुनाते हैं, और वो सुनते सुनते 63 जन्म हम लोगों ने बिताए। हाँ, जो समय थे हमने 63 बिताए थे और भक्ति की बातें सुनते रहे थे। हाथ खड़ा करो जरा, थोड़े से हैं। हो सकता है ज्यादा भक्ति नहीं की हो आपने, पर बाबा कहता भक्ति का फल भगवान मिलता है, और भगवान मिलता है तो ज्ञान देता है, सहज राजयोग सिखाता है। हाँ, इस जन्म में हो सकता है भक्ति कम की हो, पर 62 जन्म तो सबने की है और बड़ी अच्छी भक्ति करते रहे। पहले सतो प्रदान, फिर सतो, फिर रजो, अभी तमो में चले गए। तो भक्ति का फल है भगवान की प्राप्ति, और भगवान से क्या मिलता है? भगवान हम बच्चों को भगवान भगवती बनाता है, आप समान बनाता है, ज्ञान पूरा देकर के ज्ञान सागर बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बना देता है। अब आप किसी से भी छोटे बच्चे, अभी बहने भाई आते हैं मिलने के लिए तो साथ में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनकी महिमा सुनाते हैं, ये बच्ची बहुत अच्छा भाषण करती है, 5-6 साल की बच्ची, उसको कहते हैं हाँ सुनाओ क्या कहती हो, उठ करके इतनी अच्छी बातें सुनाने लगती है, मैं तो बहुत आश्चर्यवत हो जाता हूं उसकी बातें सुन करके। प्रैक्टिकल की बात आप छोड़ दो, बच्चे हैं, लेकिन बच्चे भी इतनी अच्छी बातें सीख जाते हैं, संग का रंग लगता है। मां बाप ऐसे मिलते हैं उनका संग मिलता है, और फिर सेंटर पे जाना आना शुरू करते हैं तो दीदी का संग मिलता है, अंकल का संग मिलता है, कोई ना कोई तो मिलते हैं जो बहुत प्यार से उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर के अनेक आत्माओं को कलयुगी अंधकार से निकाल करके फिर से जागृत करके सत्युगी संसार की तरफ ले जाने के लिए निमित्त बन जाते हैं। बाबा की तो हम बच्चों को एक शिक्षा मिलती थी साकार के द्वारा, बहुत वर्ष पहले की बात सुना रहा हूं, 1959 की। बाबा के सामने ज्यादा लोग बैठे नहीं होते थे, पर बाबा की मुरली ऐसे चलती थी जैसे सारे विश्व की आत्माओं को सुना रहे, और मुरली सुनने के बाद बाबा का इशारा था कि बच्चे जब तक ईश्वरी सेवा नहीं की है, किसी को बाबा का परिचय नहीं दिया है, चाहे आप बगीचे में जाके किसी को परिचय दो, चाहे मंदिर में जाके दो, चाहे कहीं सभा दूसरी है उसमें जाके दो, जब तक बाबा का परिचय नहीं दिया किसी को तब तक नाश्ता नहीं करना है। हाँ? ऐसा करते हैं आप लोग, या पहले नाश्ता कर लो, पता नहीं फिर कहां के कहां पहुंच जाएंगे सेवा में। तो बाबा का भाव आप समझिए कि सवेरे सवेरे ऐसी आत्माएं आपको मंदिर में, गुरुद्वारे में, बगीचे में ऐसे मिलेंगे जिनको थोड़ा सा ईश्वर की तरफ, ईश्वर की खोज की तरफ ध्यान होता है। वहां पर अगर आपने किसी को ज्ञान सुनाया उनका कल्याण हो जाता है। ऐसे अनुभव उस समय हम लोगों ने किए थे। बॉम्बे के हैंगिंग गार्डन में जाकर के सेवा करते थे तो मालूम पड़ता था सचमुच बाबा जो कहता है वो प्रैक्टिकल है। ये मैं क्यों सुना रहा हूं, आज का जो ये टॉपिक दिया हुआ है ना, सो स्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय, सो स्थिति द्वारा। तो सो स्थिति बनाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके हैं। सबसे पहली बात तो आप सब जानते ही हैं, जो अमृत वेले उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं वो जरा हाथ तो खड़ा करो। सभी करते हैं, वाह। जो बाबा से गुड मॉर्निंग करके फिर थोड़ा टाइम बाबा के याद में बैठने का पुरुषार्थ करते हैं वो जरा हाथ खड़ा करो, वो भी सभी बैठते हैं। तो जिन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया है बाबा के स्मृति का, बाबा से गुड मॉर्निंग करने का, और फिर बाबा के महावाक्य, आप सोचिए किसके महावाक्य हैं। दुनिया सारी उनको खोजती रही और आपको कहां बैठे मिल गए, घर बैठे भगवान मिल गए। आपको परिचय देने के लिए कोई ना कोई आकर के निमंत्रण देने आया आपके पास, क्योंकि बाबा का हम बच्चों को हुक्म कि कोई एक भी बाबा का बच्चा, कोई एक भी आत्मा बाबा के ज्ञान से वंचित ना रह जाए। इसलिए घर घर जाकर के ज्ञान की प्रकाष्ठा करनी है, ज्ञान ज्योत जगानी है, परिचय देना है। ऐसा कोई भी संसार के अंदर नहीं है जिसको संसार के हर आत्मा की चिंता हो। परिचय क्यों देना है, ऐसी क्या चीज मिली है हम लोगों को? वो चीज मिली जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस उसके लिए करते हैं फिर भी वो मिलती नहीं है, कौन सी बात है? शांति। शांति सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन जरूर होते हैं, पर शांति का अनुभव नहीं होता है। वहां पर भी खींचातान चलती है। यहां जब आप सब बाबा की याद में बैठते हैं उस समय शांति का अनुभव होता है। शांति के सागर शिव बाबा के साथ मन लगने से आत्मा को अपने शांत स्वधर्म का अच्छी तरह से अनुभव होता है। और जब अपने स्वधर्म में हम टिक जाते हैं उसका जो सुख मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो शांति का भी सुख, ईश्वरी स्नेह का भी सुख, और फिर इसके साथ में जब दूसरे किसी को आप ईश्वरी ज्ञान की बात सुनाते हैं, ईश्वरी प्रेम की बात सुनाते हैं, आप देखो उस समय सुनने वाला तो खुश होता है पर सुनाने वाला आप आत्मा आपकी खुशी का पारा कितना चढ़ता है। प्रदर्शनी समझाते हैं, उस समय के अनुभव को याद कर लो। व्यक्तिगत किसी से बात करते हैं, उस समय के अनुभव याद कर लो। तो जितना अपना जीवन ज्ञानमय होगा, ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहेगा, उतना हम शिव बाबा के समीप रहेंगे, और जितना उनके समीप रहेंगे उतना हम आत्मों पर उनके गुणों का प्रभाव पड़ता रहेगा। दुनिया में सब परमात्मा को किस लिए याद करते हैं? हे भगवान शांति दो, हे भगवान सद्बुद्धि दो, हे भगवान सुख शांति दो, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं। वो सारी बातें जो हैं आज प्रैक्टिकल। बाबा कहते हैं, बाबा तो हर एक बात का सागर है, आप अगर मनमना भव हो करके बाबा के साथ मन लगा करके रहेंगे तो सागर के संग में क्या बन जाएंगे? मास्टर ज्ञान सागर बन जाएंगे। मास्टर बच्चे को कहते हैं, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर आनंद के सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान। आप सोचो कितनी महानता आ जाएगी। जब ऐसी महानता अपने जीवन में आ जाती है तो आप देखेंगे जो अपने जीवन में आवश्यकता नहीं है जिस चीज की, अपने आप वो मैल धुल जाती है, उसको याद नहीं करना पड़ता है, अपने आप चली जाती जीवन से। इसलिए ईश्वरी ज्ञान पथ पर चलने वालों को ये बहुत क्लियर अपने माइंड में लेके चलना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि इस ज्ञान मार्ग पर चलना है तो नाक की सीध पर चलते रहो, ना इधर देखो ना इधर देखो, सीधा। और सीधा क्या देखेंगे? मेरे सामने शिव बाबा का सिंबल है, सामने कौन याद आएगा? सीधा चलने में जैसे कि बाबा हमको गाइड कर रहा है, वो आगे आगे है, हम उनके पीछे पीछे। जितना इस तरह का संकल्प लेकर के चलते रहेंगे बाबा की समीपता के अनुभव में चले जाएंगे, और बाबा की समीपता में जितना रहेंगे उतना हृदय गदगद होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, और जितना पॉजिटिव अनुभव होगा तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी। बहुत सारी बातें ऐसे हैं अभ्यास करने से अनुभव होती हैं। एक चीज विशेष सब भाई बहनों से मैं अर्ज करूंगा, हम लोगों को हमारी श्रेष्ठ भाग्य की रिजल्ट है कि हमें स्वयं भगवान अपना बच्चा भी बना करके और अपना स्टूडेंट भी बना करके हमें ज्ञान की परवरिश दे रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर चला रहे हैं। और भगवान के महावाक्य हैं, ज्ञानी तु आत्मा मुझे बहुत प्रिय है, योगी तु आत्मा मुझे बहुत प्रिय है। इस बात को थोड़ा सा अपने मन में पक्का कर लें कि व्यर्थ बातों से मन हटाकर ज्ञानी तो आत्मा बनके, योगी तो आत्मा बन करके ज्ञान युक्त योग युक्त बातों में अपना मन लगाएं और ऐसी ही बातें आपस में लेन देन करें, अनुभव की लेन देन करें। अभ्यास करते हैं तो योग में क्या विशेष अनुभव किया, सूक्ष्म वतन की सैर करने समय क्या अनुभव किया, परम धाम का क्या अनुभव किया, सत्युगी जीवन के बारे में जब सुनते तो उसमें चले जाते तो क्या अनुभव होता है। इस तरह से जब आप अपने दिनचर्या को बना लेंगे, पुरानी दुनिया से अपने आप मन हट जाएगा, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी फिर। और फिर क्या मशहूर हो जाएगा, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किसे पूछें, बाबा के बच्चों से पूछो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से पूछो कि अति इंद्रिय सुख का जीवन क्या होता है, कैसे होता है, इसका आधार क्या है, और उस आधार को कभी छोड़े नहीं। प्रातःकाल का अमृत वेला और बाबा की याद का अभ्यास और उसके साथ में ईश्वरी महावाक्य मुरली, ये दो पंख हैं इस सदमार्ग पर उड़ने के लिए। सदा उड़ती कला में रहना है तो ये पक्का निश्चय कर लो कि हमें एक दिन भी मिस नहीं। अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं, मेरी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मैं अपने अभ्यास में चाहे कहीं पर भी होऊंगा अमृत वेला कभी मिस नहीं, मुरली कभी मिस नहीं। और ये चीज मुझे बाबा ने, साकार बाबा ने शुरू में ही सिखा दी थी, 60 साल पहले की बात कर रहा हूं। और आप सोचेंगे एक मुरली कितनी बार ये रिपीट हुई होगी, पर मैं आपको बताऊं जब भी मुरली पढ़ता हूं फ्रेश एकदम, कई बातें उस समय बड़ा ध्यान जाता उस पर और रिफ्रेश कर देती है। तो जितना अपने अभ्यास को अगर एक्यूरेट बनाना है तो फिर मुरली के ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओम शांति। रिकॉर्ड बजते बजते जो अनुभव हो रहा था उसको सामने ला रहा हूं कि आज दुनिया के अंदर कहीं पर भी इतनी बड़ी सभा बैठी हो और ऐसा साइलेंस का अनुभव हो, ये कहीं नहीं होता है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो और शाम को बाबा के मिलन का अनुभव करना है सभी ने। ओम शांति।